सकते हैं अपने सबक को। वमन यामल मिन अस्सालिहाति वहुवा मुमिनुन, और वो जिसने अमल किए नेक, और वाह का तर्जुमा अगर इस हाल में करें ना तो वो ज्यादा बेहतर है, इस हाल में कि वो मोमिन भी हो, फला खाफ जुल्मन वला हदमा, तो ना उसको डर होगा जुल्म का और ना किसी हद तक, जुल्म का मतलब ज्यादती और वला हदमा और हदम का मतलब कमी, ना ज्यादती का डर होगा ना कमी का डर होगा, जैसे हम कहते हैं ना कमी बेशी, किसी कमी बेशी का डर नहीं होगा। यहाँ पे देखें यामल आया, वरना बाकी जगहों में इन लदीना आमनु आमिलु सालिहात, क्या कि यही बात की जाती है ना, ईमान लाए और साले अमल की, उसी को यहाँ पे डिफरेंट तरीके से कहा गया। यामल मुजारे है, मुजारे को इंग्लिश में क्या कहेंगे, जो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दोनों इसके अंदर होते हैं। तो ये इसमें ये खासी होती थी कि कोई काम बार बार करते जाए, प्रेजेंट में भी है फ्यूचर में भी होता जा रहा है, तसलसल इसके अंदर आ जाता है, यानी जो करता ही रहा सालिहात। ऐसे नहीं कि आज आपने क्लास सुन ली तो आज तो जज्बा बहुत है, आज तो बिल्कुल सीधे होके रहे, चार दिन बाद फिर वही 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 जुल्म शुरू कर दिए, ये नहीं, सालिहात में कंटिन्यूटी। क्योंकि अल्लाह ताला को भी कौन सा काम पसंद है, जो मुसलसल किया जाए, जो नेकियां मुसलसल है। अब हमारे ये मसले होते हैं ना कि हम जज्बाती बहुत है, जज्बात में आके एक दिन तो इतना कुरान भी पढ़ लेंगे, इतना ये सारा कुछ, अगले दिन याद ही नहीं होगा, एक दिन तहज्जुद के लिए भी उठ जाएंगे और बड़े वो नेकी पारसाई का वो करेंगे, अगले दिन याद ही नहीं। ऐसे नहीं, कंटिन्यूसली काम करें, चाहे थोड़ा करें लेकिन कंटिन्यूसली। तो कहा गया जो अमल करेगा मीना सालिहात, देखिए मिन तबीजिया इसको कहते हैं, मेन मतलब है कि बाज सालिहात में से, इसलिए कि सारी की सारी जितने नेकी के काम है, वो तो एक इंसान की कैपेसिटी भी नहीं कि सारे नेकी के काम कर छोड़े, जितने भी दुनिया में नेकी के काम, कुछ ही कर सकता है ना, लेकिन जो भी हो उनमें तसलसल हो, यामल हो, तो वो करता रहे और अल्लाह ताला क्वालिटी देखेगा, क्वांटिटी नहीं देख रहा है, बस क्वांटिटी सिर्फ वो हजार इतने नफल पढ़ लिए, 2 लाख पढ़ लिए, और इस हाल में कि वो ईमान वाला भी, ईमान होना चाहिए, वो शर्त है, क्योंकि उसके बगैर तो कोई नेकी कबूल नहीं। अच्छा, जो ऐसा करेगा तो फिर उसको कोई डर नहीं है, नेक अमल में भी हमेशगी की, चाहे नेकियां सारी नहीं भी की हैं, लेकिन जितनी उसकी ताकत थी, कुव्वत थी, हर एक बंदे की ताकत और कुव्वत भी अलग अलग होती है, जितनी उसकी कैपेसिटी में था, जितनी उसकी इस्तात में था, वो करता रहा और वो ईमान वाला भी था, तो उसको कोई डर नहीं होगा। अल्लाह अकबर। क्योंकि जुल्म हो जाना कि वहां पे उसके ऊपर कुछ डाल दिया जाए जो उसने कसूर नहीं भी किया, वो उसके ऊपर डाल दिया जाए, या उसकी नेकियों में से ही कोई नेकियां काम कर दी जाए, उस दिन नजर ही ना आए वो नेकियां, ऐसे नहीं होना। जो इखलास नियत के साथ काम करता ना, साले अमल की मैंने आपको दो ही बातें बताई थी, दो ही कंडीशन है उसकी, नंबर वन ये इखलास से सिर्फ अल्लाह की खातिर किया जाए, नंबर टू ये कि सुन्नत के मुताबिक हो, तब वो अमल साले अमल बनता है, वरना साले अमल नहीं बनता। ठीक है, हम खुद से नहीं डिफाइन कर सकते कि तो क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या वो होता है, नहीं। तो इसलिए देखिए यहाँ पे कितनी इंसान की रायत की गई ना, ये नहीं कह दिया गया कि दुनिया जहान की हर नेकी तुम करके आओगे ना तो तब फिर तुम कामयाब हो, नहीं, मीना सालिहात। तो इसलिए इंसान को इससे होप मिलता है कि मैं अपनी कोशिश करता हूं। وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, और इसी तरह हमने नाजिल किया कुरान को अरबी जुबान में। कदालिका इसी तरह, क्या तो फिर किसी तरह क्या, ये तो इसी तरह तो तब आता है जब पीछे भी कोई बात हो रही है। तो ये जो पीछे बात गुजरी थी ना, हमने आयत 99 में देखी थी कि हमने आपको अपने पास एक जिक्र दिया है, उसी की यहाँ पे आप कंटिन्यूशन है, वो बीच में बात आई और उसके बाद यहाँ पे उसकी तरफ इशारा है, उस जिक्र की तरफ, कि हमने इसी तरह इस जिक्र को आपके ऊपर नाजिल किया, ये कुरान है, ये अरबी में है। इसका मतलब ये है कि जो ये अरबी में है ना, यही कुरान है, ये जो उर्दू तर्जमा है इसको आप कुरान नहीं कहते। बाद लोग पूछते हैं, अच्छा फिर हम क्या अपने नापाकी के दिनों में क्या तर्जुमा लिख सकते हैं, क्या तफसीर लिख सकते हैं, तफसीर पढ़ सकते हैं? भाई वो कुरान नहीं है, कुरान सिर्फ ये है जो अरबी में है, ठीक है, इसके अलावा को आप कुरान नहीं कह सकते, लिहाजा आप उसको कुरान की तरह उसकी वो नहीं है हैसियत, वो तर्जुमा ही रहेगा, वो अल्लाह का कलाम नहीं है, वो इंसानों की लिखी हुई बात है, अपनी तरफ से उन्होंने बेहतरीन तरीके पे हमें समझाने के लिए दूसरी लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है। और ये अल्लाह ताला ने नाजिल किया अरबी जुबान में, तो फिर इसको फिर अरबी में ही हमने पढ़ना है, ये तो ना हो कि वो अरबी में उतरा है और हम कुरान उर्दू में पढ़ रहे हैं, ना हमारे पढ़ने का तरीका और हमारा सारा वो चीज मतलब ऐसी है कि जैसे उर्दू पढ़ी जा रही है या जैसे इंग्लिश है, तो कुरान अरबी में है, उसको हम अपनी हत्ताउल इम्कान कोशिश करें और सीखें इस चीज को कि हम अरबी की ही तरह इसको पढ़ें। और दूसरा ये कि अगर हम ये सोचते हैं ना कि हमने बस तर्जुमे पढ़ लिए तो हमने कुरान पढ़ लिया, तो ये सही नहीं है, इसीलिए हम आपको यहाँ पर अरबी का ये लफ्जी तर्जुमा ये जो होता है ताकि आप अरबिक टेक्स्ट को समझ सके, क्योंकि ये है असल कुरान। ये जो हम बैठ जाते हैं ना कहीं पे भी दर्स सुन लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, दर्स सुन लिया आपने, आप उसमें कोई दीन की बात सीखते ही हैं, मगर उसको हम कुरान नहीं कहेंगे, कुरान नहीं कहेंगे, अगर ऐसे ही किसी भी टॉपिक के ऊपर दर्स दिया जा रहा है उसको कुरान नहीं कह सकते, कुरान ये। और या फिर आप कई है ना बस तर्जुमा पढ़ते जाते, तर्जुमा पढ़ते जाते हैं बस, तो हम सोचते हैं हमने कुरान ही सारा खत्म कर लिया, नहीं, कुरान यही अरबी है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इसको हम सीखें, इसकी अरबिक को सीखें, क्योंकि असल कुरान ये है, उर्दू कुरान नहीं कहलाएगा। और ये क्यों अरबी में नाजिल किया गया, क्योंकि वो लोग जिनमें ये नाजिल हुआ था वो अरबी थे ना, ताकि वो ना कोई एक्सक्यूज कह सके कि हमें क्या पता था, हमें तो खुद ही नहीं समझ आया, हमने आगे क्या बताना था, फिर वो इसको लेके दुनिया जहान में घूमे और उन्होंने इसको आगे लोगों को बताया। और आज उलमा की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को एक्सप्लेन कर दें ये कुरान जो अरबी में है, उसकी तालीम को लोगों के लिए आम करें, इसको लोगों के लिए एक्सेसिबल करें, ऐसा ना हो कि इतनी फीसें रख दें कि बिल्कुल लोग सीख ही ना सके, या ऐसा ना हो कि इतना सख्त क्राइटेरिया रख लें कि कोई यो ही सीख सकता है, जो ऐसा हो कि वो कोई भी ना आ सके, बल्कि इसकी तालीम को आम करना चाहिए। वसर्रफ ना फी ही मिनल वाईद, और हमने इसमें फिर के वाईद लेकर आए हैं, यानी डरावे, इसके अंदर तरह तरह से अल्लाह ताला ने बातें डरावे की बताई हैं ताकि लोग मुत्तकी हो जाएं, परहेजगार बन जाएं। और ये भी देखिए इसका एक मकसद है कुरान पाक का वाईद देने का, कि लोगों के अंदर खौफे खुदा पैदा हो। हम तो खैर सुनना ही नहीं चाहते ना कोई भी वाईद कि देखो लोगों अगर ऐसा किया जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ के ऊपर जब पहली दफा बात कही थी तो यही फरमाया था ना, लोगों अगर मैं तुम्हें बता दूं कि इसके पीछे एक लश्कर खड़ा हुआ जो हमला करने वाला है तो मेरी बात मानोगे? उन्होंने कहा हाँ, तो फिर अगर तुम ये शिर्क करोगे तो जहन्नुम के अंदर चले जाओगे, ये खुदा को मानो, तो ये वाईद है, उनको डरावा दिया गया ताकि लोगों के अंदर एहसास पैदा हो कि मैंने अपने अल्लाह को नाराज नहीं करना। तकवा क्या है? अल्लाह की नाराजगी से बचना, कि मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे मेरा अल्लाह नाराज हो जाए। तो ये जब वाहिद देते ना उसका मकसद ये होता है, उसका मकसद ये नहीं होता सिर्फ कि आपकी कोई तो तंग करना है आपको या आपको कोई खौफजदा करना है, बल्कि ये कि आप वो काम छोड़ दें जिनमें अल्लाह की नाराजगी है, ये मकसद होता है वाहिद देने का। तो कुरान ने हमें वाहिद इसलिए दी है कि फिर हम डर जाए, क्या फिर हम उसकी वाहिद को सीरियसली लेते हैं, या फिर हम कह दें कि नहीं हम अब से मैंने अल्लाह की नाराजगी का काम नहीं करना। बात तो वो लेगा ना जो कभी सुनेगा, अगर सुना ही नहीं तो फिर कैसे लेगा, वाहिद को जानना ही नहीं चाहते। कई लोग तो कहते हैं ना हम तो बहुत डर जाते हैं, हम नहीं, इसलिए हम कुरान की तरफ आते नहीं, उसमें तो बस जहन्नुम की बातें हैं। तो ये ऐसे ही नहीं है, बेकार नहीं है, जाहिर है आपको बताया जाएगा उस हकीकत का जो आगे पेश आ सकती है ताकि आप पहले से अपना इंतजाम कर लें, तो इसमें तो अच्छी बात है ना, इसमें तो आपकी खैरख्वाही है, आपको कह दिया जाए कि भाई अगर आप वहां चले गए ना तो वहां पे इतना वायरस है आप बीमार हो जाएंगे, आप कहेंगे अच्छा कि आपने मुझे बता दिया भाई, ना कि आप ये कहेंगे तुम तो मुझे डरा रही हो, तुम तो मुझे डराने वाली बातें कर रही हो कि मैं बीमार हो जाऊं। नहीं, आप कहेंगे शुक्र है बता दिया, मैं कम से कम बच तो जाऊं, वहां पे नहीं जाऊंगी मैं। इसी तरह है कि आप उन कामों को छोड़ दें जो कि अल्लाह की नाराजगी के है, इसकी खातिर अल्लाह ने वही दी है। तो लोग मुत्तकी बन जाएं, और ये एक औ यहदिसु लहुम जिक्रा, या पैदा कर दे इनके लिए जिक्र, गौर व फिक्र, ताकि लोग गौर व फिक्र करें, इसलिए ये वईदें दी गई हैं ताकि नसीहत बन जाए। ये कुरान की खूबी है कि इसके अंदर नसीहत है जी। नसीहत आती है ना, कोई नसीहत करता है तो इंसान फिर अमल करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये इतने जेंटल रिमाइंडर्स हैं कुरान पाक। देखिए, हम लोग सब भूल जाते हैं, फिर कुरान की तरफ से नसीहत आते हैं, फिर याद आ जाते हैं, फिर हम अमल में बढ़ जाते हैं। तो ये कुरान पाक की बहुत खूबसूरत खूबी है, ये इसमें इतनी तासीर है। ऐसे ये नसीहत करता है कि अमल करने का दिल चाहने लगता है। लेकिन इससे कोई जुड़े तो सही, फिर जब इससे कोई जुड़ जाता है ना, फिर कहने की जरूरत नहीं होती आपने ये करना है। आप वो देख ले जितने लोगों की जिंदगियां बदलती हैं ये कुरान पाक सीखने से, समझने से। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, तो फेर फेर के लेकर आए, कभी किसी तरह, कभी किसी तरह, कभी किसी तरह वहीद लेकर आए। ये बच जाए, ये इनके अंदर खौफे खुदा पैदा हो जाए, ये गौर व फिक्र तो करें, इनके अंदर गौर व फिक्र करने की सलाहियत पैदा हो, ये इसकी नसीहत को देखें, ये इनके लिए रिमाइंडर बन जाए। तो देखिए, वो लोग जो इसको साथ जुड़ जाते हैं, फिर कोई आके नहीं उनको कहता, कोई उनके घर पे आकर उनको खड़ा होकर देखता नहीं है। माशाल्लाह, खुद ही उनके अंदर ये एहसास पैदा होता है कि नहीं, मैंने नहीं, अब अल्लाह को नहीं नाराज करना। वो सोच लेता है वो बंदा, खुद उसके अंदर एक एहसास पैदा होता है कि मुझे हिसाब देना पड़ेगा। खुद वो अपने आप को वॉच करने लगता है, उसको कोई वॉच करने के लिए खड़ा नहीं होता, उसके ऊपर कोई पहरेदार, कोई दारोगा नहीं होता, वो अपने ऊपर दारोगा खुद बन जाता है। वो अपने ऊपर सबसे ज्यादा सख्ती करता है, अपने आप को सीधा रखने के लिए सबसे ज्यादा खुद कोशिश करता है। ठीक है, फिर उसकी खलवत और जलबत सब एक हो जाती है, लोगों के सामने भी वैसा ही, अकेले में भी वैसा ही। वो नहीं परवाह होती कि लोग अब मुझे देख रहे हैं, मैं अच्छी अच्छी बन के बैठ गई हूँ, अब मेरा अकेली हूँ, अब क्या फर्क पड़ता है। नहीं, उसको फिर एक खुदा का ही खौफ होता है। तो देखिए, ये चीज ये कुरान पैदा करता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो वहीद इसमें उतारने की भी हिकमत है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि मुत्तकी तो जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगह फरमाया कि ये जन्नत हमने तैयार कर रखी है मुत्तकीन के लिए, तो तुम्हें मुत्तकी बनाने के लिए इस तरह तुम्हें बार बार वईदें दी जाती हैं, फिर ताकि तुम गौर और फिक्र करो, तुम्हें याद आ जाए, तुम जो सबक भूल गए हो फिर तुम्हें याद आ जाए, बार बार रिमाइंडर। इसलिए इसके साथ जुड़े रहना जरूरी है कि इंसान सारी जिंदगी इसके साथ जुड़ा ही रहे, ताकि उसको रिमाइंडर्स मिलते रहे। फतआलल्लाहुल मलिकुल हक, और बस बुलंद है अल्लाह बादशाह हकीकी। और इसका मकसद असल में क्या है कि अल्लाह ताला की बादशाह जो हकीकी बादशाह है, उसको उसकी बादशाहत को माना जाए, उसकी बादशाहत को बुलंद किया जाए, उसी के ऊपर अपना भरोसा किया जाए, और उसके अलावा कोई नहीं है ये बात मानी जाए। यही दावत का भी नुक्ता है कि लोगों को हम इसी की तरफ बुलाएं। अल मलिक और अल हक, बादशाह और हकीकी बादशाह, जिसके ऊपर कोई बादशाह नहीं, जिसकी बादशाहत का कोई एंड नहीं, और अल हक वो सच्चा है, उस बल्कि सच है, ये नहीं कि वो सच कहता है, वो सच करता है, बल्कि वो ही हक है, सच है ही वो। ठीक है, वला ताजल बिल कुरान मिन कबली अन युक्दा इलैक वही, जब कुरान के साथ आप हों तो उसके साथ जल्दी ना करें, इससे पहले कि पूरी हो जाए आपकी तरफ वही। जिब्राइल अलैहि सलाम कुरान लाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर होता था कि मुझे भूल ना जाए, तो अभी वो कंप्लीट नहीं की होती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से फिर से पढ़ना शुरू कर देते थे कि कहीं मुझे भूल ना जाए। इतना एहसास था ना जिम्मेदारी का, मैंने आगे पहुंचाना है, मुझे कहीं भूल ही ना जाए, मेरे जहन से ना निकल जाए, तो उसको जल्दी से रिपीट करना शुरू कर देते। फरमाया नहीं, आपको नहीं जरूरत, इसलिए कि अल्लाह ताला है ना जो आपको ये वही याद कराएगा, अल्लाह है जिसके जिम्मे है आपको ये वही याद कराए रखना। और सूरह कयामा में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया ना कि आप अपनी जुबान को तेजी से इसके साथ हरकत ना दें, जल्दी ना करें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जिम्मा ले लिया, वो आपको कराएगा, तो इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, ये भी अल्लाह ताला की जिम्मेदारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना शौक दिखा रहे हैं और अल्लाह ताला ने अपने जिम्मा लिया हुआ, इसलिए कोई ये ना सोचे कि कभी कोई के जहन में यह ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है कोई बात बताना भूल गए हो या कुछ हो, नहीं, नबी अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली थी और आपने सब कुछ वैसे ही पहुंचा दिया। और बल्कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ला तो हर एक भी लिसाना कली ताजल भी, आप सूरह कयामा में है नबी, आप नहीं जल्दी जल्दी हरकत दे, आपको नहीं इतनी परेशानी की जरूरत है, अल्लाह ताला ने तसल्ली दी, आप फिक्र ना करें, आप भूलेंगे नहीं। वकुर रब्बी जिदनी इल्मा, और आप कह दीजिए, अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए कि अल्लाह मुझे ज्यादा दे, मुझको ज्यादा कर दे इल्म में। अब ये बहुत अहम बात है ये किसके अंदर, कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को किस चीज में ज्यादती का हुक्म दिया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इल्म वाला कौन हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया आप और मांगिए अल्लाह ताला से इल्म, हालांकि तसल्ली दे दी कि आप नहीं भूलेंगे, अल्लाह ताला आपको याद दिलाएगा। लेकिन हम सब के लिए इसके अंदर एक बहुत बड़ी नसीहत है कि जब हमने इल्म लेना है तो जहां हम अपनी तरफ से मेहनत करें, साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करें, चाहे वो दुनियावी इल्म है, चाहे वो दीन का इल्म है, आपके बच्चे इल्म ले रहे हैं, आप इल्म ले रही हैं, इसके अंदर दुआ अल्लाह से करनी है। हम परेशान होते हैं, हाय मुझे भूल जाएगा, हाय मुझे क्या हो जाएगा, नहीं, अल्लाह ताला से दुआ करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो ये दुआ जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को सिखा दी, अब आप खुद सोचिए ये कितनी खूबसूरत दुआ होगी कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये नहीं फरमाया, ए नबी आप मांगे कि अल्लाह मेरी दौलत ज्यादा कर दे, ए अल्लाह मुझे औलाद ज्यादा दे दे, ए अल्लाह मुझे दुनिया में जाह और मर्तबा ज्यादा दे दे, मकाम ज्यादा दे दे, बल्कि मुझे ज्यादा दे इल्म, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ सूरह मुजादला में वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, अल्लाह के यहाँ इल्म वालों के दरजात हैं, उनके दरजात बुलंद होते हैं। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को भी सबसे पहली नेमत से जिससे नवाजा था ना, वो इल्म है, वो अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाह, और फिर इस इल्म की वजह से अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को मस्जिदे मलाइका बनाया, मलाइका ने उनको सजदा किया, इसके बाद बनाया, ये उनके दर्जात, उनकी फजीलत इस इल्म की वजह से, और आगे भी आप देखेंगे इस इल्म का ही जिक्र आएगा। तो ये तो मुस्लिम की हदीस है कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म को हासिल करना, तलब करना हर मुसलमान पे फर्ज है। फिर कहते हैं हाँ ये फर्ज है कि नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि फर्ज है कि नहीं, ये जरूरी है, यानी कोई मुसलमान की एक्सेप्शन नहीं है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी है, आपके नबी ने ये फरमाया, मुस्लिम की हदीस है, फिर भी पूछते रहते हैं फर्ज है क्या। इतना इल्म हासिल करना, ये नहीं आप वो कह रहे हैं कि आपने कोई मुफ्ती बनना है, कोई आपने बड़े बहुत बड़े शेख बनना ही है हर एक ने, लेकिन इतना इल्म सबके पास होना चाहिए कि ये कुरआने पाक की समझ हो सबको, ये कुरान की इल्म हो, अपने जो फराइज हैं उनके बारे में मालूमात सबको हो, उनको समझ, उनकी समझ सबको हो, कैसे नमाज है, कैसे हज है, कैसे जकात है, कैसे रोजा है, कैसे तौहीद है, ये सब चीजों का पता होना जरूरी है, और ये अल्लाह का कलाम, इसकी समझ होनी सबको जरूरी है, क्योंकि ये इल्मे हिदायत है, इल्मे हिदायत, और इसके बारे में ये अभी आगे आयतें आ रही हैं। और अल्लाह ताला ने तो देखिए अपने नबी को फरमा दी ना, इकरा बिस्मी रब्बी के लदी खला, तो अल्लाह ताला ने इल्म की इसमें बात की है ना, पढ़ो, तो फिर फरमाया ना इकरा रब्बुक अल अकरम अल्लदी अल्लमा बिल कलम अल्लमा अल इंसान मा लम यालम, अल्लाह ताला ने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता, उन्हें कलम के जरिए इल्म सिखाया इंसान। फिर अल्लाह ताला सूरह जुमर में फरमाया फरमाता है कुल हल यस्तव अल्लदीन यालमून वल्लदीन ला यालमून, क्या बराबर हो सकते हैं इल्म वाले और बेइल्म? नहीं बराबर हो सकते, पूछो इनसे क्या बराबर हो सकते हैं? ना दुनिया के एतबार से बराबर है ना आखरत के एतबार से बराबर होंगे, वहां पे भी दर्जात में बहुत फर्क होगा इल्म वाले और बेइल्म का, आज कुछ समझते ही नहीं है। पैसा कमाने को कह दो तो हर एक चाहता है कि हम पैसा कमाएं और बड़े से बड़े अमीर तरीन लोगों की फेरिस्त में हो जाएं और हम बहुत अमीर कहलाएं और बहुत मालदार कहलाएं, और पैसे से तुम्हारा कभी जी ही नहीं भरता। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इल्म से नहीं तुम्हारा जी भरना चाहिए, हमेशा कहते रहो कुल रब्बी जिदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में और इजाफा फरमा दे और इजाफा फरमा दे। तो देखिए इल्म की इंतहा नहीं है, इल्म कुरान का जो इल्म है ना, सारी जिंदगी भी आप इसको हासिल करते रहेंगे ना, तो इसकी जो डेप्थ है ये तो मुअज्जा है ना, इससे आप दुनिया के इल्म में फिर भी आप कितना कोई पीएचडी कर लेगा कोई ये कर लेगा उसकी एक इंतहा हो जाती जी, लेकिन जो कुरान है ये अल्लाह का कलाम है, इसकी इंतहा नहीं है। तो आप इसके अंदर जितने गोते लगाएं जितना इसकी डेप्थ में जाएं और ज्यादा आपको इल्म आता रहेगा। आप देखिए ना कितने कितने सालों लगा के मुहद्दिसीन ने एक एक किताब लिखी, हम पूरी पूरी जिंदगी उन किताबों को भी नहीं पढ़ पाते कि हम उनकी डेप्थ पूरी कर तरह से समझ सके उनको। कुरान तो खैर उससे भी ऊपर की चीज है, फिर भी लोग समझते हैं बस एक दफा पढ़ गया हमारा काफी हो गया, बस एक सर्टिफिकेट ले लिया उसको सजा के कहीं रख लेते हैं। तो ये जरूरी है कि हम इल्म के रास्ते के ऊपर हमेशा चलते रहें। इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में ग़ालिबन आता है कि वो फरमाते थे जब बिल्कुल ज़ईफ हो गए थे बिल्कुल अपने बिस्तरे मर्ग पे थे तब भी इल्म का शौक नहीं किया था, तब भी पढ़ते थे, तो किसी ने कहा आप अभी भी पढ़ते हैं? तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया वाबुद रब्बा का हत्ता यातिय कल यकीन, कि अल्लाह की इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। तो फरमाते हैं इबादत तो इल्म के बगैर हो नहीं सकती, तो फिर कैसे इल्म की इंतहा हो सकती? एक बुजुर्ग थे कि जिस वक्त उनको मौत आई तो तब भी उनके सीने के ऊपर किताब रखी हुई थी, सुभान अल्लाह, इतने वो इल्म के हरीस थे। इसलिए दुनिया के अंदर भी फिर देखो उन्होंने वो कारनामे करे कि आज तक उनकी किताबें और उनके उलूम के ऊपर बात होती, लेकिन आज हमने इल्म को ही छोड़ दिया, इस मैदान को ही छोड़ दिया, इसका शौक ही नहीं है। अगर बहुत भी किसी को है ना बस जल्दी से हमें ये इल्म मिल जाए कि हम ताकि कोई सर्टिफिकेट मिल जाए मैं कहीं जॉब शुरू कर दूं, मैं फलाने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दूं, मैं फलानी जगह पे करना शुरू कर दूं, मैं बच्चों की ट्यूशन शुरू कर दूं, मैं फलान को कर दूं, लोगों को पता चल जाए मेरे पास ये डिग्री है ये सर्टिफिकेट, ये है बस इल्म का मकसद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने वो इल्म जो अल्लाह की रजा के लिए हासिल करने वाला ना, यानी ये दीन का इल्म है, इसको दुनिया के फायदे के लिए हासिल किया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। हमारा बस ये बस सर्टिफिकेट डिग्रियां सर्टिफिकेट के तमगे चिपका लें अपने ऊपर, किसने आके आपके सर्टिफिकेट देखने? तो ये इल्म का शौक रखें, इसको शौक से लिया करें, इसको बोझ ना समझे, क्या है मुसीबत, हाय अभी ये भी पढ़ना है, हाँ वो भी पढ़ना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इल्म वाला कौन होगा? और अल्लाह ताला ने उनको अगर फरमा दिया आप ये दुआ करें, हमें कितनी करनी चाहिए? उनके पास इतना इल्म था तब भी फरमाया ज्यादा की दुआ करें, उनको कोई इल्म की जरूरत थी और नहीं, तब भी और मांगे कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे, और हम इल्म कुछ नहीं है। और बहुत ज्यादा इस चीज का तो हम मुजाहिरा देखते हैं जब हम कभी हज उमरे पे जाएं तो वहां पे पता चलता है कि क्या इल्म का लेवल है इस उम्मत का, कुछ पता नहीं होता कि क्या करना है क्या, इतनी सी चीज का भी नहीं, छोटी छोटी बातें जो होती है ना वो भी नहीं मालूम होती, पता चलता है कि हम इल्म में कितने पीछे रह गए एज उम्मा, लेकिन फिर भी एहसास नहीं है कि हमने अपने इल्म को आगे बढ़ाना है, हमने अपने इल्म को में इजाफा करना है। मैंने एक दफा कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस बहुत बड़ी कोई आलिमा बन गई हूँ, अब मैं बस काफी है मेरे लिए, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इल्म की तलाश में किसी रास्ते पर चलता है अल्लाह ताला तो उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं, और क्या चाहिए कि जन्नत का रास्ते हमारे लिए आसान हो जाए। इसलिए इल्म से कभी भी थके नहीं, कभी भी पीछे ना हो, ये तो वो खजाना है, अगर आपको मिल गया ना तो आपके लिए तो समंदर के मछलियां दुआएं किया करेंगी, आपको फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे लिए दुआ करो, फिर फरिश्ते आपके लिए पर बिछाएंगे, आसमान और जमीन की हर चीज, कहते हैं चूंटियां भी अपने बिल के अंदर उसके लिए दुआ करती हैं जो इल्म वाला होता है, मछलियां पानी में उसकी बख्शिश की दुआ करती हैं। तो कितना बड़ा लेवल हो जाता है, फिर हम क्यों इससे पीछे रहे। लेकिन याद रखिए, इसमें अपनी नीयत को खालिस रखना बहुत जरूरी है। अल्लाह की रजा वाला इल्म है ये, खास तौर पे ये जो हम कुरान का कर रहे हैं, इसको दुनिया का सामान हासिल करने के लिए ना सीखिएगा, नौकरियों के लिए, फीसों के लिए, कहीं पढ़ाने पढ़ोने के लिए, कहीं लोगों में बहुत, या चले फीस का नहीं होता, बस दबाई होता है लोगों में मेरा बड़ा मर्तबा हो जाए, लोगों को पता चले जी मैंने तो इतने कोर्स किए हैं, मैं लोगों में, चार लोगों में बैठूंगी कोई बात तो कर सकूंगी ना, ताकि लोग मेरे से मुतासिर हो जाएं, या मुझे कोई बड़ी चीज समझना शुरू हो जाए। नहीं, तब जन्नत की खुशबू भी नहीं लगी। सोचें, इस तरह का इतना बड़ा इल्म लेके भी कोई महरूम हो जाए, और बल्कि ये कितनी बड़ी महरूमी का सबब बन जाएगा अगर इस तरह की नीयत रखी। नीयत बहुत जरूरी है, कि इसमें नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा ही हो, कि बस अल्लाह तू मेरे से राजी हो जाना और मैं अपना अमल दुरुस्त कर सकूं इसके जरिए, इसको आगे भी बता सकूं, अल्लाह मेरी मेरे अंदर खशियत आ जाए, मेरे अंदर तकवा भर जाए, इसलिए मैं ये हासिल करूं और मैं इससे ना दूर हूं कभी, इसलिए कि मेरा तकवे का लेवल ना कम हो जाए। वलकद अहिदना इला आदम मिन कबल। अच्छा, अभी इससे पहले फरमाया कि इससे पहले हमने आदम अलैहिस्सलाम से भी अहद लिया। आपको पता है ना, आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा हम सूरह बकरा में भी पढ़ चुके हैं, सूरह आराफ में, सूरह हिजर में, फिर सूरह इसरा में, फिर सूरह कहफ में। अब ये यहाँ पे 6 टाइम ये आया है, ठीक है, और कुरान पाक में कितनी जगह पे आता है, ये 7 जगह पे आता है सूरह आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा। अब एक जगह और रह गई है, ठीक है, सूरह सौद में आएगा इंशाल्लाह। लेकिन हर जगह में आप देखेंगे इतना खूबसूरत है ना, कि कितनी डिफरेंट एंगल से हमें हर जगह बात समझाई जाती है। तो हमने अहद लिया था आदम अलैहिस्सलाम से, मेरा कबलू, इससे पहले। अहद लेने से मुराद क्या है, कौन सा अहद लिया था अल्लाह ताला ने, वो हुक्म जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दिया था ना, उसको यहाँ पे अहद कहा गया। और वो हुक्म क्या था, कि आपने इस दरख्त के करीब नहीं जाना, इसके फल नहीं खाना। इससे पहले का मतलब क्या, मिन कबल, इससे पहले, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले या कुरान मजीद को नाजिल करने से पहले। तो अहद क्यों कहा गया, अहद वैसे दो लोगों में, बराबर के लोगों में अहद होता है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने इंसान को ऑनर दिया, कहाँ अल्लाह की जात और कहाँ उसकी मखलूक का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को ऑनर दिया और फरमाया कि उससे अहद लिया था, और ये उससे प्रॉमिस लिया कि आपने इस दरख्त के करीब भी नहीं जाना, लेकिन फनसिया, तो वो भूल गया, वलम नजिद लहू आजमा, और हमने उसके अंदर आजम नहीं पाया, पुख्ता इरादा नहीं, इरादे की पुख्तगी नहीं पाई, कि इंसान डिटर्मेंट हो कि मैंने ये नहीं करना, और उनसे हो गया। आमतौर पे इंसान से गलती इसी बात, दो वजह से होती है, या तो भूल ही जाता है, या फिर कुव्वत इरादी में ही कमी होती है, डिटर्मेंट नहीं होता, तो फिर इस वजह से वो गलती कर बैठता है। तो एक ये भी इसके अंदर माना है कि इरादे में पुख्ता नहीं था, इरादा उसका कमजोर हमने पाया, और दूसरा माना कि उसने इरादा किया नहीं था ये करने का, यानी उसका गलती करने का अजम नहीं था, समझ आई। तो दोनों माने समझ आ गए ना, पहला माना तो वही है ना, कि भाई हमने उसको इरादे में पुख्ता नहीं पाया, उसका इरादा इतना मजबूत नहीं था, कमजोर था। दूसरा मतलब यह है कि उसका इरादा कमजोर था, यानी वो उसने इरादा नहीं किया था कि वो गलती करे, अजम नहीं था उनका गलती करने का, मगर हो गई उनसे, वलम नजिद लहू अजमा, हमने नहीं पाया उसके अंदर अजम को, उसके लिए अजम को मतलब उसके हमने नहीं पाया कि वो भाई। देखिए ना गुनाह जो होता है ना, मैं पहले भी ये बात समझ लें कि गुनाह जो होता है, एक तो गुनाह वो होता है कि जो इंसान भूल चूक उस तरह से उसने, चलिए इस तरह देखें, एक एक होता है इंसान ना प्लान करके पूरी सोच समझ के पूरे इरादे के साथ करता है, एक होता है कि इरादा नहीं किया था, वो बस भूल हो गई, याद ही नहीं रहा, या हालात ऐसे थे, सिचुएशन ऐसी बन गई कि इंसान वो कर बैठा। कभी ये होता ना कि इंसान के जज्बात इतने होते हैं, समय किसी के कोई जवान है उसके जज्बात ऐसे हैं और वो एक भूल कर बैठा, कुछ ऐसी गलत काम कर बैठा, या आप किसी ऐसी मजलिस के अंदर है, उस मजलिस के अंदर सारे ही कर रहे थे, अब उस वक्त आपके बस पता नहीं क्या आपके ऊपर इतना गलबा आया जज्बात का, आप भी उनके साथ वैसे ही करना शुरू हो गए, बाद में सोच आती है हाय अल्लाह ये मैंने क्या कर दिया, तो वो जज्बात आ गए, वो मजलिस ऐसी थी, वो हालात ही ऐसे बन गए, वो आप भी उस रो में बह गए। तो वो वाली जो भूल होती है वो एक डिफरेंट होती है, और एक होती है जो सोच समझ के जिसके अंदर इंसान कहता नहीं मैंने ये करना ही है और ये ठीक ही है जो मैं कर रही हूँ, और उसके बाद भी उसकी जस्टिफिकेशंस देता है और प्लैंड है बिल्कुल। मैं आपको छोटी सी एक जैसे एक मिसाल से सुन, मसलन आप प्लान करके आप अपने मतलब दिमाग में सोच के आपने ये सोचा हुआ है कि मैंने हिजाब नहीं लेना, मैंने अल्लाह ताला की ये चाहे हुक्म हो भी मैंने नहीं लेना, बस मैंने ये अबाया नहीं पहनूंगी, हिजाब नहीं लूंगी, मैं ऐसे ही घूमूंगी, ये आपकी प्लान्ड है, आपने प्लानिंग की हुई है उसके ऊपर, आप उसको जस्टिफाई भी करते हैं कि भाई मैं ये समझती हूँ, और एक दफा किसी से बात हुई उन्होंने कहा दी मैं तो ये समझती हूँ कि ये जो मैं बिल्कुल तैयार होके आई हुई हूँ ना बिल्कुल जरूरत, तो ये मेरा राइट है, दूसरों की ये है, मैं हर एक की मैंने जिम्मेदारी तो नहीं ली हुई, वो अपनी नजरों की खुद हिफाजत करे, उनका जिम्मा है, मैं तो जैसे तैयार मेरा दिल करेगा वो मैं वैसे होंगी, और मेरे अंदर तो मेरी नीयत अच्छी ही है, मेरी नीयत साफ है, और लिहाजा इसलिए मेरे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, सारा गुनाह उन लोगों के ऊपर है जो मुझे देखेंगे, और पूरे वो वेल ड्रेस्ड और इसके ऊपर ही वो डिटाई से बहुत बहस भी कर रही थी। अब ये क्या, ये एक प्लान्ड है, ठीक है, ये एक सोच समझ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो एकदम से। अच्छा दूसरी तरफ एक दिन ऐसा हुआ कि वे लोग बैठे हुए थे और कोई बात हुई और आपके मुंह से एकदम से कोई गीबत हो गई, कोई झूठ बोला गया, अब सोचा नहीं था, एक बाद में इतना दुख हुआ अल्लाह मैंने ये क्यों कर दिया, ये है एक भूल चूक से होना, तो दोनों में फर्क है और दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस में भी फर्क है। याद रखिए जब इंसान पछताता है उसके बाद उसको उसकी निदामत होती है फिर ही वो तौबा कर सकता है, जब इंसान पछताता ही नहीं है और वो कहता है कि ठीक है जो मैंने किया है ये मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ और मैं आइंदा भी ऐसे ही करती रहूंगी क्योंकि मैं इससे बच्चू ये सही है, तो वो कभी तौबा की तरफ थोड़ी आता है। तो ये इंटेंशनली सोच समझ के करना, प्लानिंग के साथ करना भी एक चीज होती है, इरादे के साथ करने वाली, और एक बिला इरादा एक चीज हो जाना, तो यहाँ पे कहा गया वलम नजिद लहू आजमा, उसके अंदर वो इरादा नहीं था कि मैं बस करूंगा इस तरह और मैंने ये खाना ही है और बस क्यों मुझे इससे रोका गया और मैं जाऊंगा इसके पास, ऐसा नहीं था, ठीक है भूल गया वो, समझ आई। वाइस कुल्ला लिल मलाइका तिस्जुदुली आदम फसजा दू इल्ला इबलीस अबा, जब हमने कहा फरिश्तों से कि इसको सजदा करो आदम को, तो सबने सजदा किया सिवाय इबलीस के, उसने इनकार किया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अब इबलीस ने जो किया है कारनामा, इसने जो गुनाह किया है, ये भूल वाला था कि ये प्लान वाला था, वो भूला नहीं अबा, उसने सोच समझ के, क्यों आपको कैसे पता चला कि इनकी वाली भूल थी और उसकी वाली भूल नहीं थी, इसलिए कि उसने आप देखिए उसके बाद जस्टिफिकेशन दी, हमें सूरह आराफ में पूरा उसकी डिटेल भी पढ़ चुके हैं, उसने जस्टिफिकेशन दी कि मैं तूने मुझे क्यों इसका हुक्म दिया और ये मैं तो उससे आग से बनाया गया हूँ, ये मट्टी से बनाया गया और मैं क्यों इसको सजदा करूं और मैं इसे बेहतर हूं, और ये मतलब ये सारी जो जस्टिफिकेशन वो दे रहा है ना, तो ये उस वाले में से जो इरादे से किया जाए, इसलिए उसकी रिपेंटेंस भी नहीं है, इसीलिए तौबा ही नहीं है ना, वो समझता है मैं सही कर रहा हूँ, उसको जस्टिफाई करता है, ये वाला गुनाह जो है ना ठीक है, इंसान है, हमसे भूल भी होगी, हम गिरेंगे भी, हम जिंदगी के अंदर बहुत दफा गिरेंगे, हम इंसान ही हैं, फिर गिर जाए अल्लाह के आगे, फिर रोए अल्लाह के आगे, फिर कहें अल्लाह ताला मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर। कभी ढिठाई से गुनाह ना करें, ढिठाई से गुनाहों पे जमे नहीं प्लीज, कि वो फिर तौबा की तौफीक ही छिन जाती, फिर इंसान ना ठंडे ठंडा होके वो करता है, फिर मजे से करता है, फिर वो उसको कोई निदामत भी नहीं होती, और फिर कभी उसको एहसास भी नहीं होता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इतना ढीठ बन जाता है ना, करता ही जाता है, फिर वापसी के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इसलिए ऑलवेज ये जाने कि जब गलत हो जाए ना, मत जस्टिफिकेशंस दे, मत उसके ऊपर स्टैंड ले, मत उसके लिए तावीलें ढूंढ ढूंढ के लाएं कि मैं कहां से कुछ कहूं। तो शैतान ने कहा कि इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी, ये जो आपका हुक्म है ना, इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी, मैं मुझे नहीं मुझे मतलब क्यों ऐसा हुक्म दिया, मुझे मैं नहीं ये समझता कि सही है। तो बात यह है, इतात यही होती है मान जाना, हुक्म जो भी हो मुझे इसमें मसला नहीं है, मैं बस अल्लाह तेरा हुक्म है ना, मैंने मानना है, मट्टी से बना, आग से बना, जिससे मर्जी बना, बात ये हुक्म किसका है। इसी तरह हमारे दिमाग में शैतान आज भी डालेगा, नहीं ये कैसे है, ये फिर इस तरह से नहीं है, उस तरह से नहीं, पता नहीं क्या क्या चीजें जो भी डालता है किसी भी अल्लाह के हुक्म के बारे में जो कि हमसे नहीं हो रहा, वो डालेगा जस्टिफिकेशंस, वो डालेगा लॉजिक्स, वो डालेगा सही ऐसी बातें कि ये तो 21st सेंचुरी है, ये तो ऐसे है, फिर लोग क्या कहेंगे, फिर ऐसे क्या होगा, फिर पता नहीं क्या क्या बातें डालेगा। बात ये नहीं कि आपने उसको हुक्म को तोलना शुरू कर दें, ये ठीक है कि नहीं है, ये एप्लीकेबल है कि नहीं, उस हुक्म को मत तोले, देखें ये हुक्म किसका है, बस पॉइंट ब्लैंक, जब पता चल गया ये अल्लाह का हुक्म है, दैट्स इट, मेरी इसके बाद मिजाल नहीं होनी चाहिए कि मैं आगे कोई सफाइयां पेश करूं, मैं अपनी दिमाग लड़ाऊं, मैं अपनी जस्टिफिकेशंस दूं, मैं अपनी सफाइयां पेश करूं, नहीं, बस ये है कि ये अल्लाह का हुक्म, उसका प्रॉब्लम ही ये था, उसने ये नहीं देखा हुक्म किसका, वो हुक्म की डेप्थ में जाना शुरू हो गया। इताअत है ही टोटल सबमिशन, इबादत इसी को तो कहते हैं, अब्द कौन होता है, स्लेव, जो सबमिट कर दे अल्लाह ताला को, हमारी तरफ से टोटल सबमिशन चाहिए कि आप पूरे के पूरे उसके आगे झुक जाएं, सबमिट कर दें, मेरी अपनी कोई विल नहीं, मैंने ये नहीं देखना क्या हुक्म अल्लाह ने दिया है वो ठीक भी है कि नहीं है, तो फिर तो आपने अल्लाह को क्या खुदा मानना, जब अगर आप यही देखना शुरू हो गए हैं कि इस हुक्म में ये सही है कि नहीं है, मैंने मानना है कि नहीं, फिर तो क्या आपने सबमिट किया, फिर क्या है आपका इस्लाम, इस्लाम मीन सबमिशन, सबमिट आपने क्या किया फिर, अगर आपने अपनी अकल से देख के सोचना है कि ये सही है, अव्वल तो अल्लाह ताला का कोई हुक्म गलत हो ही नहीं सकता, लिहाजा जब हमें ये यकीन है ना कि वो मेरा रब है और उसका कोई हुक्म गलत नहीं हो सकता, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं, लेकिन जब हमें ये यकीन नहीं होता ना, तो तब फिर पहले हम खुद देखते हैं हमारी ये छोटी सी पीनट के बराबर अकल के ऊपर हम चीजों को तोलते हैं कि ये सही है कि नहीं, ये मेरे लिए करना फायदेमंद होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अपने रब पे इतबार नहीं है ना। अच्छा एक बात और बतानी है, भूल गई थी, जब आप रब के दुआएं मांगते हैं ना, रब जैसे यहाँ पे भी रब बीजी आए ना, तो आपने रब माना है, मालिक, खालिक, मुदब्बिर, मुझे सस्टेन करने वाला, मेंटेन करने वाला, मुझे पालने वाला वो है, इसका मतलब आप सब कुछ ये मान रहे हैं कि वो मेरा मालिक है, जब आप रब कह देते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जैसे हम पहले भी जगह पढ़ चुके हैं कि क्या नाम है जिन, वो जिन्नों में से था, इबलीस जो था वो फरिश्ता नहीं था, सबको जब हुक्म दिया गया तो उसने इनकार कर दिया, हम पहले कई दफा पढ़ चुके हैं। अब असल बात उसके आबा की है कि किस वक्त उसने इनकार किया और क्या चीज थी जो उसको यहाँ तक ले आई, उस जगह पे हमने नहीं पहुंचना कि अल्लाह के किसी हुक्म को खड़े होके इनकार कर रहे हो और ये जुर्रत करें कि हम उसको खुद देखेंगे, पहले एनालाइज करेंगे, पहले हम उसको खुद हुक्म को खोल के देखेंगे, अगर इसके अंदर हमें कुछ लग रहा हुआ कि ये सही है तो फिर हम मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बात है, वो है जो ब्लाइंडली फॉलो करनी है, ब्लाइंडली फॉलो करनी है, उसके अंदर ना अकल का दखल ना किसी चीज का। किसी इंसान की बात हो तो हाँ जरूर, आप दूसरे इंसानों की हो तो आप जरूर हाँ कह सकते हैं कि भाई ये उसने हुक्म दिया, मैं पहले देखूं तो सही के ठीक भी है या नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की बात को नहीं। क्योंकि जब आपने अल्लाह की हुक्मों को ही डायसेक्शन शुरू कर दी ना, और उसी को देखना शुरू कर दिया कि मैं ये सही है कि नहीं है, तो फिर तो समझ लें अल्लाह ताला के ऊपर ईमान ही आपका नहीं है। ओके, वो अल्लाह ताला, वो जो खुदा जिसको बनाया है, उसकी बात पे शक है क्या? अल्लाह अकबर। अच्छा, अब हम जैसे कि हमें पता है कि उसने हसद में मुब्तला हो गया था, और हसद में जब कोई मुब्तला हो जाता है तो उसका ये होता है कि इसको मैं कैसे नीचा करके दिखाऊं, कैसे इसकी टांग खींचू, कैसे इसको गिराऊं। ये शैतानी तर्ज अमल है हसद का भी। हमें हम खुद भी ना हसद करें तब भी शैतानी तर्ज अमल है, और उसके लिए जांचने का तरीका क्या है कि हमारे अंदर हसद है या नहीं है, कि जब हम किसी की नेमत देखें, किसी को खुशी मिलती देखें, किसी के पास कोई खैर देखें, किसी के साथ कोई किसी को वो खुश होता देख लें, तो फिर हमारे दिल की हालत क्या होती है, अंदर 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 दिल के तहखानों के अंदर देखें कि क्या महसूस हो रहा है। खुश हो रहे हैं आप भी कि चलो अल्लाह शुक्र है इसको खुशी मिल गई है, मेरी बहन को खुशी मिली है, मेरी दोस्त को खुशी मिली है, तो मैं भी खुश हो रही हूँ, या एक जलन सी और एक कुड़न सी, और ये क्यों हो गया, इसको ये क्यों मिल गया, हाय मुझे तो मिला नहीं, पता नहीं इसको कैसे मिल गया। ये अगर हो रहा है ना तो जलन ही जलन है, चाहे माने या नहीं माने, ये हसद है। अब अपने अंदर से भी ये निकालना है, और कोई हमसे हसद कर रहा है तो हम कैसे बचें, सिर्फ हम नहीं जान सकते ना कौन हसद कर रहा है। दो लोग आपको तोहफे दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, किसके दिल में जलन हो रही है हमें क्या पता। इसीलिए मिन शर्रे हासिद निजा हसद, इसीलिए तो ये सूरते आखिरी पढ़ने को कहा गया है कि हासिद के हसद से हम बच सके, अल्लाह की पनाह लेके ही बच सकते हैं हम, वरना क्या को किसी के दिल को तो नहीं खोल के दे सकते मुझे कौन मेरे से हसद कर रहा है कौन नहीं कर रहा, हमें क्या पता कौन कर रहा, क्या पता कोई बहुत ही करीबी कर रहा।